چیز کسی بھی خبر کی تصدیق ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے, پاکستان بہتر تھا, عظیم تھا, عظیم ہے, مگر اس میں صرف لیڈرز کا رول نہیں ہے, میرا اور آپ کا رول بھی ہے. جسٹ سی ویئر وی آر, واٹ از آر رول. ایک ملک ایک خاندان کی مانند ہوتا ہے, اپنے خاندان کی پروٹیکشن کے لیے ہم بعض اوقات اپنے خون کے رشتوں کو بھی پرے کر دیتے ہیں. Isn't that true? تو میرا ملک, میری اساس, میری پہچان. اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
تانو پرسنل سپورٹ ورکر کیوں بننا چاہیے؟ دجیاں دے جیون وچ بدلاؤ لیاون لئی صرف 5 مہینیاں وچ اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اتے دیکھ بھال وچ اپنا کریئر شروع کرو. ودھیرے جانن لئی ontario.ca/gopsw تے جاؤ. اس لئی ادائیگی انٹیریو سرکار والو کیتی گئی ہے.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو, مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج,
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747171.
برمپٹن شہر والوں ایک سنیہا, کی تسی برمپٹن وارڈ 1, 3, 4, 5 اتے 7 وچ 4 یا گھٹ کرائے دی اکائیاں دے مالک ہو؟ جے کر ہاں تا تہانوں رہائشی کرائے دا لائسنس پراپت کرنا پوے گا. 2025 دے باقی سمے لئی سٹی دے لائسنس فیس معاف کر دتی ہے اتے نویں آویدکاں نوں مفت سموک الارم دی پیشکش کر رہا ہے. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ.
ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ.
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350,
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100,
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775.
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ.
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 2 ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ 1 ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ. ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ, ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ, 6472903773,
6472903773.
مزے دے چکن ٹکے کباب, بریانی, دال تڑکا,
لاہوری اسٹائل ناشتہ, مزیدار کڑھائی, ماؤتھ واٹرنگ کباب, سیزننگ باربیکیو آئٹم,
شاہین ٹکہ اور کباب,
ان فلیمنگٹن مال.
برمپٹن شہر ایک انویسو اسپیشیز مینجمنٹ اسٹریٹجی تیار کر رہا ہے اور ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. آپ کی رائے مقامی پودوں, جانوروں اور ان قدرتی مقامات کے تحفظ میں مدد دے گا جن سے ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں. 29 اگست تک ہمارا مختصر سروے مکمل کیجیے اور 10 خوش نصیب پائیں گے پریسٹو کارڈ جس کی مالیت ہے $20, TRCA کنزرویشن ایریا فیملی پاس جس کی مالیت ہے $35, آنٹیریو پارکس پاسز جن کی مالیت ہے $50. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے brampton.ca/invest.
خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو, آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن, فلنگس, کراؤنز, بریجز, کلیننگ, ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, 299-7466.
मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे।
जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6476027022 6 47 702 V23।
लाइट ऑफ नंबर 10394।
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो,
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और हमारे साथ प्रोग्राम में गर्मा गर्म खबरें लेकर शामिल होती हैं शाजिया मलिक साहिबा। किसी गंभीर मसले में फंसी हुई है, हालांकि इतना बड़ा वो मसला है नहीं, लेकिन जाहिर है उसको एक मतलब एक न्यूज रिपोर्टर का, एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, हाईलाइट करना, यही होता है ना, वो यही कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए, मैं मसाइल में देख रहा हूं कि दुनिया में मतलब अलग मसाइल हैं, और जैसे भी अलीजा भी आए थे, अलीजा मैंने सुन लिया था आपने जो है ना जो किया है ना मेरे साथ, कोई बात नहीं जनाब।
और जो मेरे साथ किया?
नहीं, आपके साथ तो मोहब्बत है उनकी, वो तो आपके साथ मोहब्बत है, लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई, मतलब अलीजा आपको बड़ी बाजी बोले, बड़ी बाजी, तो मैं समझ सकता हूं कि वो मतलब आप मतलब अलीजा किसी को बड़ी बाजी कहें, वो खुद माशाल्लाह बड़े बाजी हैं, मतलब बड़े भाई हैं, लेकिन अगर वो किसी को कहें बड़ी बाजी, यानी आपको, वल्लाही वो
कहते हैं मुझे,
वो दो मतलब कहते हैं ना कि दो वेरीफाइड हो गए उस पे।
हाँ जी, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम।
नहीं, अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, यही इम्तिहान था आपका।
अच्छा अच्छा,
मैंने अभी आपको पर्दे में लेकर, पर्दे के पीछे आप अभी आली जाए।
अच्छा,
आली जाए, आली जाने का कि अरफाबा मैं शाजिया जी, मेरी बड़ी बहन है।
हाँ।
बाजी आंटी बोलता हूँ।
हाँ?
बाजी बोलता हूँ,
बाजी बोलता हूँ।
तो मैं कैलकुलेट कर रहा था अलिया की मतलब टाइम फ्रेम कि जब अलिया किसी को हाँ। बाजी कह रहे हो तो वाकई वो क्या लेवल होगा,
क्या लेवल होगा। नहीं, अलिया का प्यार है, वो मोहब्बत में कहता है।
नहीं, अभी
लेकिन मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता अगर मुझे कोई बाजी या अम्मा या आंटी या जिस वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब लास्ट ईयर, यही वो दिन थे, एग्जैक्टली दीज वर द डेज जब मैं हरम में थी लास्ट ईयर,
वहां भी आपको बाजी कह रही है।
तो वहां पे वो बच्चे जो आते थे ना होटल की में सफाई करने के लिए, तो वो मुझे अम्मी कहते थे, तो मुझे उन पे इतना प्यार आता था। मैंने कहा देखो जरा कि जो है बच्चे बेचारे, वो बांग्लादेशी थे बहुत सारे, हाँ, तो वो छोटे छोटे बेचारे, मुझे लगता है 20-22 साल के, तो वो मुझे अम्मी कहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मगर मासूम।
तो अब अलीजा तो नहीं कह सकते ना।
अब अलीजा तो जो बाजी कहता है।
नहीं, बाजी पे मुझे आज बड़ा, मैं टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर रहा
हूँ
कि एक शख्स खुद माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे, मतलब वो जब किसी को बाजी कहे तो वो फिर टाइम फ्रेम कितना होगा
भाई। पता तो है, 10 दफा तो बताया तुमने 1945।
हाँ, वो तस्दीक हो गई ना,
तस्दीक हो गई। हाँ,
तो ये हो गया। बहरहाल मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर तहे दिल से, और एक बार जो तरीकेकार है आपको खुशामदीद कहने का, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं
WS मेरे अजीज हमवतनों, कैसे हो, ठीक हो, डटे हुए हो?
गुड्डी उड़ रही है।
अच्छा,
दूसरी गुड्डियां काट दी है। अपनी गुड्डी उड़ रही है,
उड़ रही है। और वो मशीन उन्होंने वो मोटरें भी उठा
आपने वॉशिंग मशीन में लगा लिए भाई, वो मेरी कल भी बात हुई।
अच्छा,
किसी ने कहा कि जी वॉशिंग मशीन में लगा लिए, किसी ने ट्यूबवेल में लगा लिए।
अच्छा,
और एक कह रहा था यार वो टायर में हवा भरने के लिए वो पंप, पानी खींचने का पंप,
पानी खींचने का
उस पर लगा दिए घरों में। लोगों ने वहाँ पता कराची में पानी भी नहीं आता, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ता है, पानी खींचने के लिए पंप लगाते हैं।
तो वो उसमें वो मोटर उस पर
नहीं है, इजरायली मोटर ऐसी तेज चलती है भाई, ताजा पानी आ रहा
है।
और कुछ लोगों ने तो ये बेचारे उतने छोटे छोटे टिन डब्बे वाले,
हाँ।
उन्होंने तो उसको एज अ शेल्टर बना लिया ऊपर।
अच्छा,
हाँ वो अजीब टाइप के नहीं, हाँ। ड्रोन, उनको तो एज अ शेल्टर यूज कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा,
उनका तोड़े तोड़े मार के फ्लैट, हाँ, किया उन्होंने,
फ्लैट किया।
उसके बाद शेल्टर बना लिया। धूप बहुत है ना, बहुत गर्मी है आजकल कराची, बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा यार इजरायली धूप कर रहे छांव के नीचे, तो ये आते हैं। तो अच्छा माहौल है पाकिस्तान में ओवरऑल, आप भी खबरें सुन रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो तिरंगा परेड हो रही है, तिरंगा मार्च हो रही है। दे हैव राइट टू डू एनीथिंग, व्हाट एवर दे वांट टू
डू कंट्री या व्हाटएवर दे विश टू, हमको कोई एतराज नहीं है। हम अपने मुल्क में खुश हैं, हम भी जो है परचम परेड निकालेंगे, हम भी खुश होंगे। बिल्कुल, तो
हम तो वैसे हर तरह की परेड निकाल लेते हैं,
अगलों की भी परेड निकाल लेते हैं।
हम तो परेड निकालने में माहिर, और भारत एक जो बहुत जबरदस्त दिमाग में आ गया था, लेकिन एयर पे जाने की वजह से मैं अपने आप को सोचा कि शायद उसको अभी ना बताया जाए,
नहीं, बता
फिर कभी, नहीं, नहीं, फिर कभी करेंगे, उसको ज्यादा हो जाएगा।
हाँ।
तो इस पे कंट्रोल रखना चाहिए।
ठीक है,
तो क्या खबरें वैसे आज की?
बस खबरें क्या है, हमारे जो बोंगे किस्म के लोग हैं,
बोंगा वो कौन है?
हाँ, बोंगे वो बैठ जाते हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के सामने, जैसे पियर्स मॉर्गन का जो शो था उसके अंदर जी, वो मुझे तो समझ नहीं आ रही हिना रब्बानी खर साहिबा की, कि भई आप फॉरेन मिनिस्टर रही हुई हो पाकिस्तान की, आपको दुनिया में इंडिया ने क्या किया वो पता ही नहीं है। वो बरखा दत्त और वो एक छोटा सा छोकरा जिसके के ऊपर अभी वो जो है गंदे जो
मीम बन रहे,
जो उसने वर्ड्स यूज किए उसके ऊपर, जो उसके ऊपर केसेस बने हैं, वो उसको बिठाया हुआ है वहां पे, और वो तस्वीरें लाला के ऐसे शोधा दिखा रहा है, और इनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे कि इंडिया ना सिर्फ अपने घर में बल्कि रीजन में बल्कि ट्रांस नेशनल टेररिज्म चला रहा है। कनाडा के अंदर उसके बंदे जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, अमेरिका में तो पकड़े ही गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए हैं, और दुनिया के हिस्सों में, यानी इनके मुंह से ये चीजें ही नहीं निकल रही कि किस तरह तुम क्रिश्चियंस को मुल्क में मार रहे हो, हमारी मस्जिदें मुसलमानों की ढा रहे हो। इस किस्म का बेहुदा इंटरव्यू से लेडी से बात ही नहीं हो रही थी हिना रब्बानी से, एंड आई वॉज लाइक लुकिंग एट हर फेस। और वो दूसरी तरफ बरखा दत्त को उन्होंने बिठाया हुआ था, वो उसको बोल रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे जैसे बरखा दत्त ने उससे पूछा कि भई ये तुम जैश ए मोहम्मद और ये बाकी के जो हैं स्प्लिंटर इस तरह के ग्रुप्स, उनको टेररिस्ट तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, तो अगर मैं वहां बैठी होती तो मैं कहती हाँ जी बिल्कुल हम मानते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं।
बिल्कुल सही,
लेकिन आपका क्या ख्याल है बरखा दत्त जी बीएसएफ के बारे में, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जिसके बंदे इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडियन ट्रेन्ड एंड इंडियन फंडेड हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आके हर रोज हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में भी जो है वो दंगे करते हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, और केपी के अंदर भी कर रहे हैं, उसके बारे में बरखा दत्त जी आपका क्या ख्याल है? तो ऐसे बेहुदा पैनलिस्ट वहां पे बिठाए हुए,
वही मुशर्रफ वाली बात है, मुशर्रफ साहब से जब सवाल पूछा था, वही मशहूर इंटरव्यू मुशर्रफ साहब का,
जी जी जी, जो
जी ओसामा बिन लादेन जो है वो
हॉप्स बैठे हुए थे,
उस पर क्या जवाब दिया था उन्होंने?
तो उन्होंने कहा जी वही वो जो छोकरा था वो वही ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लाया था, और कहने लगा ये तो तुम्हारे मुल्क में ही पकड़े गए हैं। अब उधर मैं अगर बैठी होती तो मैं कहती जी बिल्कुल हमारे मुल्क में वो पकड़ा गया, हालांकि हमारी स्पॉन्सरशिप उसको नहीं थी, लेकिन तुम्हारे मुल्क का क्या, जिसको के अभी भी बुचर ऑफ गुजरात जो है वो हेड कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
अमेरिका ने तो बाकायदा पाबंदी लगा दी थी,
सारे यूरोप में वो आ नहीं सकते थे जब तक के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे।
यस,
तो हमारा तो वो ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन तुम्हारे मुल्क का जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और उनके जो अकम्प्लिस है मोदी जी के अमित शाह साहब, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अब अगर तो बोलने वाले जो है ना ये ऐसे बड़े मीडिया हाउसेज में पियर्स मॉर्गन टाइप के शो में जब जाओ तो मेहरबानी करके थोड़ा और तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो अब इतनी ज्यादा आम है और लोगों दुनिया को पता है,
तो आम पाकिस्तानी से ही पूछेंगे,
पाकिस्तानी से भी पूछेंगे, उनको भी पता है कि इन्होंने कैसे बुरी तरह से ये एक्सपोज हुए हैं सारी दुनिया। लेकिन उनसे जी वो एक और भी जर्नलिस्ट बताया हुआ था ना उससे उसको वो ये फैक्ट्स बोल रहा था ना तो ये मैडम बोल रहे थे, मैं तो हैरान हो रही थी कि यार ये किस तरह की तैयारी करके जाते हैं इतने बड़े शोज में। हम जैसे बेचारे छोटे लोग जो हैं जब आते हैं इधर तो इतनी हमने तैयारी की होती है, पढ़ाई की होती है, 10 मीडिया हाउसेज में इंटरव्यूज राइटिंग्स उनकी पढ़ी होती हैं, और तुम लोग जो फॉरन बैठे हो, तुम्हारे जिनके मसाइल ही नहीं है कि जिन्होंने घर जाके खाने बनाने हैं या सफाइयां करनी है, तुम लोगों की अगर तैयारियां नहीं है तो मतलब अफसोस की बात है ना। तो इंतहाई बेहुदा किस्म का वो इंटरव्यू था वहां पे पियर्स मॉर्गन शो पे, और इसीलिए वो इंडियंस जो दोनों थे वो चढ़ गए थे इनके ऊपर क्योंकि इनके पास ना तो कोई बैकग्राउंड था। तुम तो पूरी लिस्ट पहले तो मस्जिदों की लेके जाते जो इंडिया में डाई गई हैं, उसके बाद जितने क्रिश्चियंस को मारा गया है उनके जो चर्च जलाए गए हैं उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए थी, मणिपुर में क्या हुआ है उसके डिटेल्स होने चाहिए थे, तो और उसके बाद कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में क्या क्या कुछ किया है तुम्हारी गवर्नमेंट ने, वो सारे फैक्ट्स तुमको लेके बैठने चाहिए थे उस इंटरव्यू के अंदर, ताकि तुम एक एक चीज जो है उसको जो है तुम उसका जवाब दे सकते। खासतौर पे ये जैश मोहम्मद वाला क्वेश्चन था, तुमसे बोला क्यों नहीं गया भाई कि तुम्हारा तो बीएलए जो है वो ट्रेंड एंड फंडेड बाय इंडिया है, क्योंकि ब्राह्मदार गुप्ती तो इंडिया में बैठा हुआ है, वो अपने बंदों को इंडिया में बुला के ट्रेन कर रहा है और फिर वापस भेज रहा है, यू सी। तो बहरहाल कल मेरा दिल बहुत ही जला है जिस वक्त
टेंशन नहीं है। हो जाएगा
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह पाकिस्तान पे खैर करेगा और झूठे जो है ना झूठों का मुंह इंशाल्लाह काला करेगा, बिल्कुल काला करेगा वो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम।
खबरें सुना
ठीक है जी,
खबरें सुनाने के लिए जनाब आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eawaz.com और 24/7 आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं, इसके अलावा हमारा टेलीविजन देख सकते हैं, इसके अलावा तमाम ही स्पॉन्सर्स के नंबर भी हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। इसके अलावा 24/7 अगर आप अपने मोबाइल पर रेडियो सुनना चाहते हैं तो 6478724900 6478724900। तो चलते हैं गर्मा गर्म खबरों की तरफ विद शाजिया मलिक।
हाँ जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय QTL क्विक ट्रक ल्यूब। आपको पता ही है बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक ऑयल्स डालते हैं आपके ट्रक्स के अंदर, और जब डालते हैं तो आपका ट्रक भागता फिरता है, तो अगर आपको भी अपने ट्रक का हेल्थ अच्छा रखना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनके नैपनी का लोकेशन जो है उसको विजिट भी कर सकते हैं। इनका नंबर है 1519622060। एंड अगर आपको बंडल में चाहिए है डील्स अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की, या आप घर चेंज कर रहे हैं या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ही चेंज करना चाहते हैं, तो आप जाइए सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायसेस पे, 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप उनको कॉल भी कर सकते हैं एट 9054502828। और जनाब अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो स्पेयर एंड मके पे जाएं, स्पेयर एंड मके की जो ब्रिटानिया रोड पे जो नई लोकेशन आ गई है वहां पे बहुत अच्छे इटालियन फैब्रिक के कपड़े आपको मिलते हैं, और इनको आप कॉल कर सकते हैं 9056703388 पे। अच्छी कोई आपको ज्वेलरी चाहिए, अगर आपके घर में कोई ओकेजन आ रहा है ऐसे जैसे कि कोई निकाह है, शादी है, कोई ग्रेजुएशन किसी बच्चे की, अभी जैसे कि अभी खत्म होंगे सेशंस तो शुरू हो जाएंगी तो यूनिवर्सिटी के, तो आप उनको ज्वेलरी देना चाहते हैं तो पायल ज्वेलर्स पे जाएं, असलम भाई होते हैं वहां पे, तो वो कहते हैं हम दुबई, सिंगापुर और इंडिया से ज्वेलरी बहुत सारा लेकर आए हैं, ब्रैम्पटन में है। इनका नंबर है 9057907879। अगर अच्छा खाना खाना चाहते हैं आप तो आप फैसल चट्ठा के पास जाइए, वहां पे विलेज टेस्ट में दो रेस्टोरेंट्स हैं उनके, एक मिसेस सागा में है, एक ओकविल में है, तो आप उनको सेल पे कॉल कर लीजिए अगर आपको ऑर्डर्स डालने हैं कोई 6477744888। और जी अगर आपको अच्छे दांत चाहिए तो डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं, उनके भी अभी दो क्लिनिक्स हैं, एक मिसेस सागा रोड पे है, एक रिजवे प्लाजा में आ गया है, तो डॉक्टर नाजिया रहमान के पास भी हर तरह के दांतों के आपके कोई इम्प्लांट्स हैं, कोई और क्राउन लगाने हैं, रिमूव करवाने हैं आपने कुछ टीथ जो है, टीथ वाइटनिंग कराना है, तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाओ एट 9058721100। और कौन है हमारे सबके दोस्त राजा बाशा जी, राजा बाशा जी के पास आपने जाना है क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे होम और ऑटो के जो है डील्स देते हैं, खासतौर पर आमिर का नाम आपने लेना है उनके पास जाके, और ऑल स्टेट के साथ है, और कहते हैं मैं आपके ढेरों पैसे बचाऊंगा। इनका नंबर है 6472903773। ओके जी, हमारा जो पहला है आज की न्यूज जो है वो मार्क कार्नी से रिलेटेड है, उनके कुछ इंटरव्यूज जो है वो हो रहे थे, कुछ कॉन्वर्सेशन उन्होंने की है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है वो बिल्कुल लिबरल पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि हम उसको अपनी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी में बनाएं। एक इंटरव्यू में इनके उसे रेडियो हॉल पे पूछा गया कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि क्या आप कुछ कंजर्वेटिव ब्लॉक क्यूबेकवा एनडीपी या के ग्रीन्स के कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 117 के सीट्स है और सिर्फ दे आर शॉर्ट ऑफ 2 सीट्स, तो आप किसी को कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा जी लेकिन कि मैं बिल्कुल ऑपोजिशन एमपीज के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि कंट्री को आगे लेके जाया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो मैंने पीए पॉलीएफ साहब को फोन किया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने भी उनको इमीडिएटली कहा कि क्योंकि वो लूज कर गए थे अपनी कॉल्डिटन की सीट, तो उन्होंने कहा कि अगर आप री इलेक्शन सीख कर रहे हैं बाय इलेक्शन में यानी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इमीडिएटली उसको कॉल करने को तैयार हूं। और उन्होंने कहा चूंकि अभी वो ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर नहीं है तो मेरा ताल्लुक जो है एंड्रयू शीर के साथ रहेगा और मैं चाहूंगा कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो कनाडा से रिलेटेड इश्यूज है उनको सपोर्ट किया जाए। इंटरिम एनडीपी लीडर डॉन डेविस जो है उन्होंने ऐसे कहा था कि शायद कोई लिबरल ऐसे ओवरचर्स कर सकता है यानी कि शायद वो कर सकता है, तो अगर ऐसा कुछ है भी तो कर्णी साहब ने आज उस पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो एटलीस्ट जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमको ऐसा करने की क्या जरूरत है, हमें एक इलेक्शन हुआ है वहां पे 19 मिलियन लोगों ने वोट किया, उसमें से मोस्टली लोगों ने लिबरल्स को वोट किया है और हमको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 10 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में हमारा मेजॉरिटी है और मोस्ट सीट्स है हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर और हम जीते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चेंज और ये चेंज हम लेकर आएंगे। वो लोग जो मेरे साथ टेबल पे अब बैठेंगे यानी कि मेरी कैबिनेट और मेरे मिनिस्टर्स हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं मैं पर्सनली और वो लोग के इस मुल्क के अंदर चेंज लेकर आए। तो ये आज उन्होंने कुछ बातें की हैं। न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब हमारी अनीता आनंद साहिबा, उन्होंने आज बहुत ज्यादा इतराज किया है इसराइल के ऊपर कि वो फूड को यूज कर रहा है एज पॉलिटिकल टूल इन गाजा और उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है इनको हमास के साथ। और उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी अहेड ऑफ कैबिनेट मीटिंग, तो उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते हैं कि ये फूड को यूज करें एज पॉलिटिकल टूल। ओवर 50,000 पैलेस्टीनियंस हैव डाइड ड्यू टू एग्रेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस एंड गाजंस और ये फूड को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करना अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को जो है सीज फायर के लिए काम करना चाहिए और कनाडा हमेशा अपनी पोजीशन जो दो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसके ऊपर मेंटेन रखेगा। जो लॉन्ग टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थी ये मेलानी जोली साहिबा, जिनको के अभी फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं मिली है, जो अभी इन्होंने नई कैबिनेट अनाउंस किया है कार्नी साहब ने, तो उसके ऊपर एक इंटरव्यू मेलानी जोली का भी लिया गया है। उन्होंने कहा जी आपको इकोनॉमिक पोर्टफोलियो दे दिया गया है, उसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अरसे से मेरे माइंड पे था और बहुत अरसे से मैं ये कह भी रही थी कि मेरा ये पोर्टफोलियो चेंज कर दें, तो मैं बड़ी हैप्पी और एक्साइटेड हूं कि मेरी बात उन लोगों ने सुनी है। मैं जब भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में कहीं पर भी जाती थी तो सारी दुनिया में बात इकोनॉमी की होती थी और हमारा भी मेन फोकस जो है गवर्नमेंट का वो इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। इसी तरह की एक बातचीत जो है कार्नी साहब से भी पूछी और उनसे पूछा गया कि क्या बात है कि मेलानी जोली को आपने क्यों उठाया एज अ फॉरेन मिनिस्टर, क्या वो व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील नहीं कर सकती है? तो कार्नी साहब ने उसके ऊपर कहा कि जोली और तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो अभी चूज हुए हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड है और हर कोई जो है यूएस के साथ डील कर सकता है, लेकिन हमारा जो है और इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली डील किया था इन हर रोल विद द व्हाइट हाउस एंड द प्रेसिडेंट, लेकिन जो व्हाइट हाउस के साथ या प्रेसिडेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो कि मैं हूं, जो कि मैं करता रहूंगा और मेरी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इनके साथ एंगेज करेगी और फोकस करेगी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा। तो उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको कहीं पर भी फिट किया जा सकता है ताकि वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर हैं जी जो नेट एर्स्किन स्मिथ, वो बहुत ज्यादा जो है वो अब डिसअपॉइंट हुए हैं, वो कहते हैं जी मुझे फिर से री इलेक्ट नहीं किया इन्होंने एज अ मिनिस्टर, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो नाराज है जिसको आप बोल सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने बात की, ही इज एन एमपी फ्रॉम बीचेस ईस्ट यॉर्क और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि कैबिनेट को मिली है और मैं चाहता था अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती तो यूं हाउसिंग क्राइसिस जो था उसको सॉल्व करता। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं अपने पुराने और नए तमाम दोस्तों को और जो है ये बड़े केपेबल लोग हैं लेकिन इनको इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि अभी हमको, मैं होप करता हूं कि आने वाले मंथ्स में ये बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। स्मिथ साहब जो है उनको फर्स्ट सिलेक्ट किया गया था 2015 में, जनवरी 2024 में उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट सीकिंग री इलेक्शन, लेकिन दिसंबर में जब इनको हाउसिंग मिनिस्टर बनाया था ट्रूडो साहब ने, तो तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया है और मैं जो है अब री इलेक्शन जो है सीक करूंगा 2025 में। दूसरे कुछ जो मिनिस्टर जिनको के नहीं कंसिडर किया गया है कॉर्नी साहब ने अपने कैबिनेट के अंदर, वो हैं फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर, फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर जोनाथन विल्किंसन, फॉर्मर ट्रेजरी बोर्ड प्रेसिडेंट जिनैट पिटपैस टेलर और फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर टैरी डुगेट। तो ये जो है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉर्नी गवर्नमेंट। कैनेडा पोस्ट जो है उसने कहा जी कि वो बिल्कुल पॉज कर रहे हैं टॉक्स विद द यूनियन रिप्रेजेंटिंग पोस्टल वर्कर्स, जैसे जैसे कि ये डेडलाइन जो है ये पास आती जा रही है। क्राउन कॉर्पोरेशन जो है उसने कहा जी कि ये जो इनके साथ टॉक्स इतने वीक से चल रही थी बिल्कुल फ्रूटलेस रही है और ये टेम्पररी पॉज जो लगाया गया था पोस्टल सर्विसेज में, उनको हम कहते हैं कि एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान लेके टेबल पे आओ, ऐसे ही इधर उधर की बातें मत करो। यूनियन ने अलबत्ता जो है बहुत ज्यादा इनके ऊपर एतराज किया है क्योंकि अब डेट जो है वो पास आ रही है दिसंबर में। इनके ऊपर जो है वो ऑटवा ने फेडरल लेबर जो मिनिस्ट्री है उसको बोला था कि इनको बोलो बैक टू जॉब का इनको हुक्म दो दिसंबर में, क्योंकि ये टॉक्स में इम्पैस है और ये जो हॉलीडे सीजन है इसमें जो मेल्स हैं उनकी डिलीवरी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ रही है। अब ये जो इनको जो प्रपोजल की लास्ट डेट दी गई थी वो मई 22 थी और अगर उस वक्त तक इन दोनों के बीच में बातचीत ना चलाई गई तो फिर ये मेल सर्विसेज एक दफा फिर से जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन जो है कनाडा पोस्ट ने कहा है कि जाहिर है कि मेन मुद्दा जो है टॉक्स में वो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं इनके उसी पर रहेगा। जाहिर है भाई अब तनख्वाहें लोगों की नहीं बढ़ाए गए और चीजें महंगी होते जाएंगे तो कैसे चीजें जो है चलेंगी। हेड ऑफ लॉबलॉस कंपनीज लिमिटेड ने कहा है कि ये जो टैरिफ रिलेटेड जो चीजें हैं प्राइसेस हैं ये अब राइज करेंगे क्योंकि जो प्री टैरिफ इन्वेंट्री हमारे पास थी वो सारी के सारी अब जो है खत्म होती जा रही है। सीईओ पर बैंक जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब हमारे पास लिमिटेड सामान रह गया है और तकरीबन ओवर 1000 से लेस चीजें रह गई हैं और ये जो हैं अब राइज करेंगी। वो कहते हैं जी कि हमारे पास जो हैं जो हम स्टॉक करते हैं वो तकरीबन कुछ जो चीजें हैं जो राइज करेंगी ओवर 3000 कुड पीक एट ओवर 6000 इन द नेक्स्ट टू मंथ्स। और उन्होंने कहा जी कि वैसे तो 80000 आइटम्स जो कि हम स्टॉक करते हैं उसमें कुछ ही स्मॉल शेयर है जिसमें कि ये टैरिफ्स जो हैं इनको हिट करेंगे इन प्रोडक्ट्स को, लेकिन फिर भी कस्टमर्स को ये चेंज जो है ये बिल्कुल नजर आएगा। इसके अंदर जो चीजें अफेक्ट होंगी वो नेचुरल फूड्स, पेंट्री स्टेपल्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। वो कहते हैं ये तमाम चीजें जो कि अफेक्ट होंगी टैरिफ्स की वजह से उसके ऊपर हम अब एक सिंबल लगाएंगे टी का, यानी कि टी स्टैंड फॉर टैरिफ्स। तो यानी कि इस चीज का प्राइस अगर आप पहले 10 का ले रहे थे तो अब आपको 12 का इसलिए मिल रहा है कि इसके ऊपर टैरिफ लगाए तो टी लगाएंगे। और वो कहते हैं जी कि अब हम जो है कनाडा के अंदर ही और आउटसाइड यूएसए जो है हम कुछ मार्केट्स फाइंड आउट कर रहे हैं जिनसे ये चीजें हम मंगवा सकते हैं। ट्रंप साहब जो है जी उनकी मुलाकातें सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल-शारा के साथ हुई है जब वो सऊदी में रियाद में थे और उन्होंने उनको अर्ज किया है कि जी इसराइल के साथ आप अपने ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ठीक करें। उन्होंने कहा जी कि हम तमाम सैंक्शंस जो हैं एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम आपसे उठा रहे हैं और जो पिक्चर्स पोस्ट किए गए हैं सऊदी स्टेट टीवी के उसमें देखा जा रहा है कि वो शेक हैंड्स कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस और तुर्की के जो प्रेसिडेंट अर्दोगान थे उन्होंने इस मीटिंग के अंदर वर्चुअली इनके साथ पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर मार्को रूबियो और बाकी जो ऑफिशियल्स थे जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी के वो भी वहां पे बैठे हुए थे। इन्होंने ट्रंप साहब ने शारा को कहा कि जैसे यूएई बहरेन और मोरक्को ने अब अपने टाइज अंडर अब्राहम एकॉर्ड्स नॉर्मलाइज किए हैं इसराइल के साथ इन 2020 आप भी करो और जो है चीजें आगे चलाओ। इससे पहले भी इन्होंने कल भी कहा था कि इट्स टाइम फॉर देम टू शाइन और आज जब उनकी मुलाकातें हुई इससे पहले कि वो कतर के लिए चले जाते उन्होंने इनको कहा। लेकिन उसके साथ साथ जो बैड न्यूज है हालांकि ईरान के साथ जो है ट्रंप साहब की बातचीत चल रही है और उनके जो हैं विटकॉफ साहब उनके एनवॉय वो बात कर रहे हैं लेकिन आज ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है कि इरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू चाइना के में जो कंपनीज इरान की जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो अब एक तरफ आप टॉक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सेंक्शंस भी लगा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा। आज ट्रंप साहब जो हैं वो जनाब पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद कतर में कतारी अमीर जो हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके साथ इनकी बड़ी प्यार की लवी डवी जो है मुलाकातें हुई, जिसमें कि अमीर ने कहा कि वी विल टेक आवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, और इनके बीच में जो है वो बूस्ट कर रहे हैं डिफेंस एंड ट्रेड टाइज। दोहा में जब ये पहुंचे तो ये ट्रंप साहब का पहला विजिट है एज प्रेसिडेंट टू कतर इन हिज सेकंड प्रेसिडेंसी। इसके अलावा जो कतर है उसने अनाउंस किया कि कतर एयरवेज जो है वो तकरीबन 210 बोइंग जेट्स खरीदेगी एट द ट्यून ऑफ 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके साथ साथ जो है कतर के सेंट्रल बैंक गवर्नर शेख बदर बिन मोहम्मद बिन साउद अल थानी, उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क के साथ जो इनके साथ थे, और ये बोइंग की डील के ऊपर भी बातचीत हुई। ये बोइंग जेट्स जो हैं 777X हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव जेट्स जो हैं बोइंग के वो कतर लेगा। इसके अलावा जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये जो डील्स हैं ये इकोनॉमिक एक्सचेंज जो दोनों कंट्रीज के ऊपर रहेगा इट विल टच 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और इससे पहले सऊदी के अंदर भी उन्होंने कोई तकरीबन 145 डील्स किए हैं वर्थ 300 बिलियन यूएस डॉलर्स। व्हाइट हाउस ने कहा कि सऊदी कंपनी डाटा वोल्ट जो है उसने फर्दर 20 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है इन्वेस्ट करने का वादा किया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूएस। तो जनाब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये देख रहे हैं आप, इन्होंने जो है साइन किए हैं बिजनेस डील्स ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब कहते हैं ना कि आई एम अ डील मेकर, तो डील मेकर जो है हमारे मुल्क में जो है कहते हैं ओ जी इसने डील कर लिया थे जेल तो बाहर आ गया, डील नु बड़ा बुरा समझे। ए देखो जरा ट्रंप साहब कहते हैं मैं डील मेकर हैं, तो हूं इतने वड्डे मुल्क का इतना वड्डा बंदा है कह रहे हैं मैं डील मेकर हूं ऐसे। अच्छा जनाब चाइना और यूएस जो है वो कट कर रहे हैं टैरिफ्स ऑन ईच अदर्स गुड्स फॉर 90 डेज। 90 डेज के लिए ये कहते हैं जो उसमें हम बातचीत करेंगे, और ये टेम्पररी सीज फायर जो हो गया, ये ब्रूटल ट्रेड वॉर जो चल रही थी इनकी, उसमें आज बहुत ज्यादा तेजी देखी गई ग्लोबल मार्केट्स में एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन के अंदर। ये डील जो है उस वक्त हुई है जब इनकी वीकेंड के ऊपर जनीवा में इनके ऑफिशियल्स के बीच में टॉक्स हो रहे थे, और दोनों ने ड्रास्टिकली लोअर किया है स्काई हाई टैरिफ्स को। ट्रंप साहब ने कहा कि यूएस जो है वो एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट उसने चाइना को दिया है फॉर अ स्ट्रांग ट्रेड डील, और हमने बीजिंग की इकोनॉमी को यूएस बिजनेसेस के लिए बिल्कुल खोल दिया। यानी कि मतलब ये है कि कोई कोई उसके ऊपर जो है वो कोई पाबंदियां नहीं लगाए जाएंगे, तो इस तरह की उन्होंने कोई बात की, लेकिन डिटेल्स उन्होंने कुछ दिए नहीं है। आज ये जिस वक्त चढ़ रहे थे एयरफोर्स वन में और जा रहे थे वहां पे कतर, तो उस वक्त जो है इन्होंने बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ये जो डील है अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए और अमेरिकन मार्केट्स के लिए ये अमेजिंग रहेगी। अब डिटेल्स क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। यूएस के मिडल ईस्ट एनवॉय जो है स्टीव विटकॉफ वो अब कह रहे हैं कि देर इज अ जेन्युइन चांस फॉर प्रोग्रेस इन टॉक्स ऑन गाजा एंड प्रिजनर एक्सचेंज एज वेल। विटकॉफ साहब जो है वो उन्होंने कहा है कि जी ये जो ट्रंप साहब के नहीं, ये आप गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इराक की पिक्चर है जो है नवदीप। विटकॉफ साहब जो हैं उनकी वो जो आज बात कर रहे थे प्रेस से वो आप प्लीज दिखाएं। तो उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के ये जो एनवॉय हैं विटकॉफ साहब भी, और जो इनके हॉस्टेज अफेयर्स के एडम बोहलर साहब जो हैं वो अब तल अवीव में उन्होंने मीटिंग्स किए हैं फैमिलीज के साथ ऑफ इसराइली हॉस्टेजेस इन गाजा, और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम इनको 58 रिमेनिंग हॉस्टेजेस जो है हम इनको वापस लेकर आएंगे, चाहे वो डेड है चाहे वो अलाइव है। और उन्होंने विटकॉफ साहब ने कहा जी कि ये जेन्युइन चांस है फॉर प्रोग्रेस, और वो भी जा रहे थे दोहा, तो उसमें उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो है हम अब ओवरसी करेंगे, हालांकि जो है हमास ने इनका जो अमेरिकन कैप्टिव था एडन अलेक्जेंडर उसको भी छोड़ा था गाजा से, लेकिन अभी भी 58 जो हैं उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा जी कि 9,900 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इजरायली प्रिजन्स के अंदर है, और जो है काफी टॉर्चर स्टारवेशन और मेडिकल निग्लेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूज जो है वो फेस कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे नतन याहू साहब के लिए और यॉव गैलेंट के लिए फॉर वॉर क्राइम्स, और इजरायली फोर्सेस जो है उन्होंने आज भी जो बहुत ज्यादा इंटेंसीफाई कर दिए हैं गाजा के ऊपर जो अटैक्स हैं उसके अंदर 80 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मारे गए हैं। तो विटकॉफ समझते हैं साहब के जी ये सीज फायर जो है अभी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप साहब है उन्होंने भी सीज फायर की बात की है गाजा में विद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस, तो देखेंगे अभी क्या होता है। इराक ने रिलीज किए हैं जी ओवर 19,000 प्रिजनर्स अंडर स्वीपिंग एमनेस्टी लॉ टू रिलीव प्रेशर ऑन इट्स ओवर क्राउडेड प्रिजन सिस्टम, और इसके अंदर लोगों का खतरा है कि ये बहुत सारे जो आईसिस के मेंबर्स पकड़ के बंद किए गए थे उनको भी छोड़ा जा रहा है। ये बहुत सारे जो थे एग्जीक्यूशनर्स थे आईसिस के मेंबर, और जो है इन्होंने अटैक करके 1/3 ऑफ इराक्स टेरिटोरी जो थी उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था इन 2014, और बड़े मेजर जो इनके बिग सिटीज थे जैसे कि मोसल, तिग्रित, फलूजा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, हजारों लोगों को मारा था, सैकड़ों को इन्होंने डिस्प्लेस किया था, और यजीदी पॉपुलेशन को तो डेसिमेट बिल्कुल कर दिया था। उसके बाद इनको पकड़ा गया था बाय इराकी फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड अलायंस फोर्सेज, और फिर इन्होंने रीटेक किए थे एरियाज, लेकिन अभी वो कहते हैं जी कि जेल में अब हम इनको और ज्यादा नहीं रख सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, और इनको छोड़ा गया। और किसी जमाने में इराक जो था वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज था मिडल ईस्ट में, और बिल्कुल उसका भी जो है ये अकॉर्डिंग टू ये जो अंकल सैम का प्लान है ना अलॉन्ग विद देयर एलाय इसराइल, कि कैसे हमने 6 मुस्लिम कंट्रीज को बिल्कुल सत्यानाश करना है, ये उसी का हिस्सा था, उसी का हिस्सा आपने ये देखा होगा कि जैसे इन्होंने किया है लीबिया के साथ भी और इराक के साथ भी और सूडान के साथ अब कर रहे हैं और सीरिया के साथ कर रहे हैं, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ देयर प्लान। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि यूएस को कब समझ आएगी कि वो इसराइल की वॉर लड़ रहा है, तो उसको इट शुड रियली यू नो स्टॉप दिस। यूके की गवर्नमेंट जो है जी उसको अब हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है ओवर एक्सपोर्ट ऑफ F-35 जेट कंपोनेंट्स जो कि यूज किए जा रहे हैं इसराइल में। को क्लेमेंट्स जो है इसके अंदर अल हक पैलेस्टीनियन राइट्स ग्रुप है और ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क है, जिन्होंने के यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो है केस फाइल किया है। जनीन वॉकर जो कि लॉयर है विद ग्लैन एंड लीगल फर्म बिडमैन्स, उनको जो है रिप्रेजेंट कर रही और रिप्रेजेंटेटिव है अल हक के भी, उन्होंने भी ये कहा है कि गवर्नमेंट कब स्टॉप करेगी सप्लाइंग F-35 कंपोनेंट्स टू इसराइल, क्योंकि इसराइल अपना ऑनस्लॉट जो है गाजंस के अगेंस्ट वो खिलाफ रोक नहीं रहा है, एंड ओवर 61,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। September 2024 में यूके की गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कहा था कि हम ये कंपोनेंट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, और 30 of 350 आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंसेज भी ताकि जिसके के अंडर जो है ये दिए जाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इसराइल वायलेशंस कर रहा है। और उन्होंने फिर कहा था कि कुछ हम कंपोनेंट्स तो देते रहेंगे साइटिंग ग्लोबल प्रोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। यूके गेव 15% ऑफ दोज कंपोनेंट्स, और September 2024 में हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा काट ला रहे हैं और सस्पेंड कर रहे हैं, फिर भी डाटा जो आया, जो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पूरी आई थी, उसने ये शो किया कि इंग्लैंड चोरी छुपे फिर भी इसराइल को ये पार्ट्स देता रह गया, और इन्होंने शिपमेंट्स किए इसके इवन टिल अबाउट March 2025। तो अपने लोगों से झूठ बोलते रहिए कि हमने सस्पेंड कर दिया और भेजते रहे, तो इसीलिए इनके ऊपर अब यूके की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ये लॉ सूट लाया गया है, जिसके के अंदर अब जो कार स्टॉर्मर की जो गवर्नमेंट है उसके लिए काफी ये शर्मिंदगी का बायस हो सकती है। ट्रंप साहब जो है जनाब उनकी हम जो है अब आपको डिटेल्स जो है वो बताएंगे कि जो है उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो डिफरेंट हैं और जो इंडिया है वो बिल्कुल डिफरेंट कह रहा है। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक दफा फिर से कहा है कि जी हमारा रोल जो था वो बड़ा मेजर था इन ब्रोकरिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या दोनों साइड्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल्स हैं, मैंने इनसे कहा था कि तुम दोनों ट्रेड करो क्योंकि तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं। कतर जाने से पहले रियाद में इन्होंने कहा जी कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सक्सेसफुली ये एक हिस्टोरिकल सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जबकि वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। उस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं वो भी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ज्यादातर जो मैंने किया है ये अपनी टीम की मदद से किया है। और मैं कहते हैं, मैंने उनको कहा फेलाज मेक डील और ट्रेड करो, न्यूक्लियर मिसल्स ट्रेड मत करो। और मेरा ख्याल है कि उनको मेरी बात समझ आई। उसके बाद वो कहते हैं जी इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया कि अगर इन दोनों को एक डिनर पे बुलाया जाए और इनकी मुलाकातें कराई जाएं। तो मैं यही देखता हूं कि दैट्स द वे फॉरवर्ड। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसके अंदर हजारों जो लाइफ थी वो लॉस्ट हो सकती थी और इनके बीच में ये लड़ाई जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और लेकिन दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, स्मार्ट है, गुड लीडर्स है, इसीलिए ये वायलेंस जो है वो रुक गई है। और मुझे, मैं होप करता हूं कि इट विल रिमेन दैट वे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं मार्को रूबियो के लिए कि जिसने कि कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ मिलकर दिन रात काम किया दोनों कंट्रीज के साथ। अब निया जो है वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कोई टॉक जो है वो नहीं हुई, क्योंकि ट्रंप साहब ने, हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जी मैं ट्रेड रोक दूंगा तुम दोनों की, तो इसलिए तुम लोगों को दोस्ती करना ही पड़ेगा, तो उससे डर के शायद दोनों ने सीज फायर किया। तो मियां कहता है कि ऐसी तो कोई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की जो है वो कहती है जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जो कि ट्रंप साहब ने कहा था कि कश्मीर के मामले पर भी मैं मीडिएशन चाहता हूं, कर सकता हूं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर कोई भी बात नहीं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहां पर और इंडिया पाकिस्तान एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की खबरें इस ब्रेक के बाद।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Akal Truck and Loom.
Tade truck badsha di quality service repair, oil change, wash, te maintenance. Ek aur khush khabri. North American, Chinese, te Korean name te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck and Loom. 1776 Mearside Drive, 905-565-1100. 905-565-1100.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
ब्रैंटन शहर एक इन्वेसिव स्पेशीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है और हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी राय मकामी पौधों, जानवरों और उन कुदरती मकामात के तहफ्फुज़ में मदद देगा जिनसे हम सब लुत्फ़अंदोज होते हैं। 29 अगस्त तक हमारा मुख्तसर सर्वे मुकम्मल कीजिए और 10 खुशनसीब पाएंगे प्रेस्टो कार्ड जिसकी मालियत है $20, TRCA कंजर्वेशन एरिया फैमिली पास जिसकी मालियत है $35, ऑन्टेरियो पार्क पासेस जिनकी मालियत है $50। मजीद मालूम के लिए विजिट कीजिए brampton.ca invasives.
The sound of money reaching home has never been so simple, from your hands to their hearts. In India, with just a few taps, TapTap Send gives you great competitive exchange rates when your family needs support.
No complicated forms, no hidden fees, just our easy to use app to send money back home. Download our app and use promo code RADIO20 to get an additional $20 on your first send of $200 or more. Tap tap and send.
जी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज विजिट किया है फ्रंट लाइन एरियाज में ऑफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में, और उन्होंने रीअफर्म किया कि हमारे जो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ हम बिल्कुल सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। ये आज विजिट कर रहे थे पसरूर गैरिसन को नियर सियालकोट। इनकी मुलाकातें जो हैं ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ हुई जिन्होंने कि इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इनकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन की तारीफ की और जैसे उन्होंने डिफेंड किया मदरलैंड को उसके लिए भी इन्होंने कहा जी कि अब मैं दूसरे भी कुछ एयर और नेवल बेसिस जो आने वाले दिनों में उनको भी मैं विजिट करूंगा। इसके साथ साथ आज उनकी बातचीत यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी हुई ऑन सिचुएशन इन साउथ एशिया, और ये उनकी थर्ड फोन कॉल थी जब से ये सारे मसले इंडिया के साथ शुरू हुए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रेटरी जनरल की तारीफ की फॉर हिज डिप्लोमेसी एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस टेंशन, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड अग्रेसिव मूव दिखाया था पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो ऑन गोइंग टेंशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके बीच जो मेन और आज की सबसे बड़ी खबर हमें जो आई है कि पाकिस्तान हैज अचीव्ड अ रेयर इकोनॉमिक रिकवरी इन द लास्ट टू ईयर्स और इसने अट्रैक्ट किए हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को. और ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की नहीं है. दिस रिपोर्ट हैज अपीयर्ड इन बैरन्स. ये बैरन्स जो है ये एक वन ऑफ द टॉप यूएस पब्लिकेशन जो है वो है और उसने इस चीज को पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक मिरेकल जो है उसका नाम दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन $40 थी एनुअली. आमिर, $40 से अब कितनी हो गई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में? जीरो. जीरो हो गई है अब इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर. यूरो बॉन्ड्स का जो मेच्योरिटी है वो 2031 में इट रोज टू 40 सेंट्स ऑन डॉलर टू 80 सेंट्स. बेंचमार्क के एसई 100 इंडेक्स ट्रिपल्ड. डबल भी नहीं, ट्रिपल्ड. इसमें बहुत सारे उन्होंने एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया है और उन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पाकिस्तान इज नोन फॉर द बूम एंड बस्ट साइकिल, यानी कि वो काफी तरक्की दिखा सकता है क्योंकि जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है. वो कहते हैं कि ये जो थे बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे 2022-23 में बिकॉज ऑफ डेवस्टेटिंग फ्लड, सर्जिंग ऑयल प्राइसेस क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था और डोमेस्टिक पोलिटिकल अपहीवल था उसकी वजह से. और लोग सोच रहे थे कि ये बिल्कुल श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाएगा 2023 में. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बहुत ही अग्रेसिव मॉनिटरी टाइटनिंग की और जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको 10% से बढ़ा के 22% पर कर दिया, जिसकी के वजह से मुल्क में रिसेशन आया. लेकिन पाकिस्तान के जो मेजर क्रेडिटर्स थे चाइना, सऊदी, यूएई, उन्होंने लोन्स तो जो है वो रोल आउट किए लेकिन उन्होंने नया क्रेडिट कोई भी पाकिस्तान को नहीं दिया. और इस तरह पाकिस्तान का जीडीपी जो है 2.5% पे राइज किया इन 2024, जबकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में भी कोई हार्डली 0.67% पे कर रहा था. वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का अभी जो है इट्स गॉट करंट अकाउंट सरप्लस and it is making progress in the IT sector which has touched $3 billion. lekin abhi bhi aap zara compare karo india se kitna hai, india ka kitna hai ji IT ka? $200 billion ka ji unka IT ka export hai india ka. to pakistan ka 3 billion ka hai. to can anyways hole hole hum wahan ja rahe hain. स्पेशल कोर्ट इन इस्लामाबाद जो है उसने जी इंस्ट्रक्शन दिया है अडियाला जेल की अथॉरिटीज को कि वो इमरान खान को अपने बच्चों के साथ जो है वो बातचीत करने दे और जो मेडिकल चेकअप्स है उसके जो पर्सनल फिजिशियन है उससे भी वो कर सकता है. उन्होंने लास्ट मंथ जो है स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने ये अप्रूव किए थे इनके पिटीशन जो खान साहब की रिक्वेस्ट पे डाले गए थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे अडियाला जेल की अथॉरिटीज को कि उनके बच्चों से भी उनको बात करने दो और उनके जो अपना पर्सनल डॉक्टर है उसको भी विजिट करने दो. लेकिन जो अडियाला जेल के अथॉरिटीज ने उसने कोर्ट के ऑर्डर्स को ना तो फॉलो किया और डिसमिस किया. जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के अगेंस्ट है. वाह वाह वाह, क्या बात है. और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने फिर एक अपनी जो है कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ एक अपनी डाली थी, प्ली डाली थी जिसको कि कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं आप ये जो है कैरी आउट करें कोर्ट के ऑर्डर्स. इससे पहले एक दिन पहले इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं सुलेमान जिनकी के अब 28 इयर्स एज है और कासिम जो कि 26 इयर्स के हैं उन्होंने कुछ वेस्टर्न मीडिया से अभी लेटली कुछ बात करनी शुरू की और जिसमें कि उन्होंने बताया जी कि हमें ना तो हमारे बाप से मिलने दिया जाता है, हमें जो है 5-6 घंटे पहले बताया जाता है कि तुम्हारा जो है बाप से फोन हो सकता है और वो ऑड आवर होता है, अगर हम वो मिस कर देते हैं तो फिर कई कई महीने हमारी बारी नहीं आती है. और हमें पता चला है कि वो बहुत ही बुरे हालात में एक छोटे से सेल में कभी उनके पास जो है चीजें भी पूरी नहीं होती है उसमें, लेकिन वो बहुत ज्यादा उन्होंने तो उससे पूछा इंटरव्यूअर ने, उन्होंने कहा कि कैसिम और सुलेमान से कि क्या इमरान खान जो है वो कभी झुक जाएगा इनके जो एस्टैब्लिशमेंट का जो है जो मतलब जो सख्ती है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बाप बहुत ही रेजिलियंट आदमी है और उसका फेथ अल्लाह पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो अल्लाह पे फेथ रखते हुए वो कभी भी इनके आगे नहीं झुकेगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल है, इज अ प्रिंसिपल्ड मैन. हमें भी वो कहता है प्रिंसिपल्स के ऊपर जिंदगी गुजारो और प्रिंसिपल्ड मैन है और वो कहता है कि मैं जब तक मेरे पार्टी के बंदों को नहीं छोड़ा जाएगा उस वक्त तक मैं भी नहीं जाऊंगा. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमसे सिर्फ 20 मिनट की बात ये लोग करने देते हैं, जिसमें कि 10 मिनट वो हमें बताते हैं कि किस तरह आपने अपने मजहब को फॉलो करना है, और फिर 10 मिनट वो अपने बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, हमको ज्यादातर बाहर से ही पता चलता है कि उनके साथ बहुत खराब किस्म का सलूक किया जा रहा है। इसके बाद उनसे कासिम और सुलेमान से पूछा गया कि क्या वो तस्वीर दिखा दे जरा इमरान खान और उसके बेटों की। कासिम और सुलेमान से पूछा गया, फिर उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगे, तो इन दोनों ने कहा कि हमारा बाप, ये जो सिस्टम था, ये जो हेरिडिटरी सिस्टम है कि माँ के बाद बाप, बाप के बाद बच्चा, बच्चे के बाद उसका बच्चा, उसके ही खिलाफ है, और उसने इसीलिए हमें हमेशा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, तो इसलिए हम बिल्कुल अपने बाप की बात मानेंगे और पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। पाकिस्तान ने हैंड ओवर किया है जी बीएसएफ का जवान पूर्णम कुमार शॉ टू इंडियाज बीएसएफ 21 डेज आफ्टर ही वॉज अप्रीहेंडेड बाय द रेंजर्स अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर और बिटवीन इंडियाज एंड पाकिस्तान पंजाब। ये जो अटारी बॉर्डर है इस पे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से ऑपोजिट वाघा, इसने वो कहते हैं जी इंडिया के मुताबिक ये इनएडवर्टेडली यानी कि बेख्याली में इसने क्रॉस कर लिया, पाकिस्तान के टेरिटरी में आ गया वाइल ऑन हिज ड्यूटी इन फिरोजपुर जंगा। मतलब फिर तुम्हें ट्रेन ही नहीं किया अपने बंदे नू, और अगर आपने ट्रेन प्रॉपरली किया इसका मतलब ये आपका स्पाई था जो स्पाइंग करने आया था, और अगर घूम जाता यहां पे तो ये बड़ा कुछ पता नहीं क्या तबाही फेरता। बहरहाल जी इसको पकड़ा था जी अप्रैल 23 को, इसको डिटेन किया था पाकिस्तान रेंजर्स ने, और अब ये जो कि अब पाकिस्तान ने इसको वापस किया तो इंडिया ने कहा जी इसका फुल बॉडी चेकअप करेंगे, इसका मेडिकल टेस्ट होगा और इसका फिर ब्रीफिंग एक सेशन होगा। और ये जो था 21 डे डिस्टेंशन में था पाकिस्तान का, ये 24th बीएसएफ बटालियन का था, और अब इसको वो कहते हैं जाहिर है कि एक्टिव ड्यूटी में हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मालूम नहीं है कि अब इसका क्या ब्रेन वॉशिंग किया है या क्या किया है। तो बहरहाल ये हैंड ओवर जो था काफी पीसफुल रहा, और इन रिटर्न जो है पंजाब रेंजर्स का जो लड़का इन्होंने एक पकड़ा हुआ था मोहम्मदुल्ला, वो आज उन्होंने पाकिस्तान को फिर वापस किया है। आईएसपीआर ने कहा जी कि दो और पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं इंडियन स्ट्राइक में जो जख्मी हो गए थे उनकी आज डेथ हो गई है। ये जो इंडिया ने स्ट्राइक किया था मई 6 और 7 के बीच में बहुत ही अग्रेसिवली, तो ये बच्चे जो जख्मी हो गए थे ये जो है इनकी अब डेथ हो गई है। वो कहते हैं जी कि आईएसपीआर कहती है जी कि इन्होंने बहुत ही अनवेवरिंग रिजॉल्व शो की टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, और इन्होंने जो है अपनी जान दे दी मुल्क के लिए। तो अब पूरे जो फौजी जिनकी के डेथ्स हुई हैं उनकी तादाद अब 13 हो गई है और 78 जो है जख्मी हैं इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो ये जो मार्टर्ड हीरोज हैं पाकिस्तान के, इनके नाम हैं शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद और एक पाकिस्तान एयरफोर्स का शहीद है सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज। तो बार अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो डेटोनेट की है आउटसाइड द हाउस ऑफ एमएनए एंड पीएम स्पेशल असिस्टेंट मुबारक जेब इन केपीज बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट, और इन्होंने एक्स के ऊपर आके कहा कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था ये मुझे और मेरी फैमिली को इंजर करने के लिए किया गया था, और उन्होंने बहुत ही कंडेम किया इस कावर्डली अटैक को, और उन्होंने कहा जी कि हम में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है लेकिन मेरे घर का जो गेट है वो उड़ गया है। एक और इसी तरह का एक्सप्लोजन जो है वो सारेब रोड में क्वेटा में हुआ है नियर अ पोलिटिकल रैली लेड बाय पीपीपी एमपी एमपीए अली मदद झटक झटक साहब जो है उसके अंदर नहीं जख्मी हुए हैं लेकिन 6 लोग जख्मी हुए हैं और उनको शिफ्ट किया गया है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। ये रैली जो थी हॉकी ग्राउंड को जा रही थी टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन बनयाम मसरूर और जो है अगेंस्ट आई मीन ऑफकोर्स जो निकाली गई थी ये ऑपरेशन किया था इंडिया कैन प्रोवोक्ड एग्रेशन के लिए। तो वो रैली जो थी वो क्रिकेट ग्राउंड में जा रही थी तो सॉरी हॉकी ग्राउंड में जा रही थी जब उस पर अटैक हुआ। इंडिया ने आज रिजेक्ट किया है जी चाइना का अटेम्प्ट टू रीनेम सम ऑफ द प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, और उन्होंने कहा कि इट्स एन एब्सोल्युटली प्रिपोस्टरस अटेम्प्ट और ये अनडिनाइएबल जो है ये स्टेट जो है इंडिया का हिस्सा है, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया ने कहा जी कि बीजिंग जो है उसने अनाउंस किए हैं कुछ चाइनीज नेम फॉर सम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश क्योंकि चाइना उन हिस्सों को जो है वो सदन तिब्बत का हिस्सा समझता है। मियां के जो स्पोक्स पर्सन है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन रदीन जायसवाल हैं उन्होंने कहा हमारा बड़ा ही जो है प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह का कैटेगोरिकल अटेम्प्ट ऑन पार्ट ऑफ चाइना और क्रिएटिव नाम रखने से कुछ बदलेगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा हमेशा हमारा हिस्सा था हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। तो भाईजान इनके ऊपर भी जरा एक ऑपरेशन सिंदूर करो, चाइना के ऊपर भी तो आपको जरा पता चले ना कि आटे चावल का क्या भाव है, आपको पता चले। चलो करो, अभी पाकिस्तान पे तो फटाफट चढ़ाई कर लेते हो आप। अच्छा जनाब, ये जो अपोजिशन है इंडिया की, उसने जो नैरेटिव लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद अब बीजेपी ने 10 डे कंट्री वाइड तिरंगा यात्रा निकालने का जो है वो सोचा है, टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यस, दैट देयर 5 जेट्स वर डाउन्ड एंड सेवरल ऑफ देयर जो चेक पोस्ट थे दे वर ब्लोन अवे, एंड यस दैट्स वाई ग्रेट अचीवमेंट। तो और वो कहते हैं जी कि मोदी जी ने भी कमाल करके रख दिया, पाकिस्तान को क्या जवाब दिया, तो इसको तो सेलिब्रेशन बनता है। इसने कांग्रेस ने स्टार्ट किया था जय हिंद यात्रा इन दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, इम्फाल एंड जयपुर, और उसके नाम पे फिर उसके बदले में फिर इन्होंने कहा कि ये हम ऐसा करेंगे। सीनियर लीडर्स जो हैं विनोद तौड़े एंड तरुण चुग और इनके और भी दूसरे जो टॉप मिनिस्टर्स और बीजेपी के टॉप ब्रास है, वो कह रहे हैं जी कि हम ये यात्रा निकालेंगे। और क्योंकि ऑपोजिशन ने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे कि ये यूएस ने जो इंटरफेयर किया है ब्रोकर करने का, ये सीज फायर का डील पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के ऊपर जो बात किया, तो क्या इंडिया की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन है। बीजेपी जो है उसका कहना है जी कि वॉच एंड वेट हमारा सिचुएशन है, लेकिन अब कुछ लीडर्स ने कहा कि नहीं, यात्रा निकालना जरूरी है ताकि ऑपरेशन दूर के सक्सेस जो है लोगों को बताई जा सके। बीजेपी के बिहार यूनिट ने जो है ये अनाउंस की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने बहुत ही नॉकआउट पंच दिया है पाकिस्तान को अंडर मोदीज गवर्नमेंट। बीजेपी के जो एमपी है प्रेसिडेंट वीडे शर्मा, उन्होंने कहा जी कि हमने सेलिब्रेट करना है अपने बहादुरी, अपने आर्म्ड फोर्सेस को। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं तुर्की के स्टेट रन मीडिया के और उनके ड्रामे और चीज सबको बंद कर दिया, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने बहुत ओपनली आके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो अब हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं जी कि तुर्की के तमाम प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करो और अब हम तुर्की विजिट पे भी नहीं जाएंगे। आमिर खान की जो फिल्म है सितारे जमीन पर, उसका ट्रेलर जो है वो ऑफिशियली आज रिलीज किया गया है, जहां पे कि इनको देखा जा रहा है इन द रोल ऑफ कोच गुलशन। और ये ट्रेलर जो है ओपन होता है विद लाइव बास्केटबॉल मैच और फिर ट्रांजिशन करता है एक स्पोर्ट्स हॉल में, जहां पे कुछ प्लेयर्स विद डिसेबिलिटीज बैठे हुए हैं, वहां पे उनका कोच गुलशन भी है। एक वॉयस ओवर आती है कि तू है तो बहुत एक्सलेंट कोच बट यू आर अ स्वाइन। और फिर देखा जा रहा है कि ये इसका बहुत ही बैड बिहेवियर है, ये सुपीरियर को पंच कर रहा है, पुलिस व्हीकल को में जाके क्रैश करता है और फिर ये कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट कहता है कि तू बहुत टैलेंटेड है इसलिए हम तुझे सजा दे रहे हैं कि तू बास्केटबॉल की जो स्पेशल लोगों की टीम है उसको ट्रेन कर। तो अभी लोग जो है वो बड़ी इसकी तारीफ कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि मोस्ट बॉलीवुड एक्टर्स जो है वो अफ्रेड है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन मुझे कुछ डर नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट का कुछ भी कभी गलत देखूंगा तो मैं जरूर उनके बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं कोई टैक्स चोरी तो करता नहीं है। उन्होंने बड़ी तारीफ की आज मैरिल स्ट्रिप की, हॉलीवुड की वन ऑफ द वेरी गुड एक्ट्रेसेस है। तो वो कहते हैं जी कि वो यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे अक्सर आवाज उठाती है लेकिन इंडियन एक्टर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये चीजें जो है फिर उनके फिल्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं एंड स्क्रीनिंग्स को भी, बाकी चीजें जाहिर है वी कैन अंडरस्टैंड। अहेड ऑफ वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग एट कान्स फिल्म फेस्टिवल, जो टॉम क्रूज है वो आज कास्ट मेंबर्स के साथ पोज कर रहा था फॉर फोटोकॉल, और बहुत ही ज्यादा जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने जो डेथ डिफाइंग और डेयर डेविल स्टंट्स किए हैं उसके लिए लोग इनको बहुत ज्यादा वो जो है इनको करते रहे। एक मास्टर क्लास इवेंट हुआ था जिसमें कि राइटर डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैग्वारी जो है उनसे पूछा गया कि भई ये कुछ क्रूज साहब के बारे में बताओ हेड ऑफ द फेस्टिवल्स प्रीमियर, तो उन्होंने रिवील किए बहुत ही टेरिफाइंग किस्म के ये जो डिटेल्स है और जो ये डेयर डेविल स्टंट्स खुद से करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये एक बायप्लेन उड़ा रहे थे 10,000 फीट अबव अफ्रीकन लैंडस्केप और फिर प्लेन के अंदर कुछ जो है वो मुश्किल आ गई और वो सारी की सारी टेंशन फिल्म की सीन में देखी जा रही है कि ये कोशिश कर रहा है उसको करने की लेकिन ये डरता नहीं है, ये अपने स्टंट्स खुद ही करता है। और वो कहते हैं जी अभी प्रीमियर होएगा तो और भी मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा। आईपीएल जो है जी वो अब सैटरडे से शुरू हो रहा है लेकिन कंसर्न्स आगे हैं कि क्या फॉरेन प्लेयर्स जो है इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे क्योंकि अब ये जो स्केड्यूल है आईपीएल का ये अब बहुत ज्यादा क्लैश कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर के साथ। ये खत्म होना था June 3 को, 9 days लेटर देन ओरिजिनल प्लान्ड, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो इसमें रह सकेंगे। क्योंकि ये जो उनके अपने खुद के जो दूसरे ग्लोबल फिक्सर्स जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, खासतौर पर प्रेपरेशन फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट लॉर्ड्स ऑन जून 11, उसके साथ ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो भी शुरू हो रही है मई 29 को। इसके अलावा साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल प्रेपरेशन बिफोर मे एंड। तो आईपीएल जो था वो स्केड्यूल था कि वो खत्म हो जाएगा मई 25 को, और फिर सारी टीमें जो थी वो सोचते थे हमारे लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन अब पॉसिबल उनका नहीं रहेगा। मैनी ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो वैसे भी घर जा चुके हैं वापस, और अभी देखना है कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जो है वो चाहते हैं कि वो गोल्ड जीते फॉर अपकमिंग एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। उसने आज लाहौर में रिपोर्टर्स को बोला कि उनकी बहुत ही पिछले 5 महीने से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है, और वो चाहते हैं कि ये अपना पहला बड़ा कंपटीशन जो है आफ्टर ओलंपिक्स जीते, और उनका पूरा फोकस जो है टू डिलीवर द बेस्ट। वो कहते हैं जी कि मेरा मुकाबला अपने खुद के साथ रहता है और किसी के साथ नहीं, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं इन बड़े इवेंट्स के ऊपर गोल्ड जीतता रहूं। मैं अब टारगेट कर रहा हूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड एशियन चैंपियनशिप एंड एशियन गेम्स एंड डायमंड लीग्स एंड देन एलए जो है यानी कि लॉस एंजलस ओलंपिक्स इन 2028, उन सब में मैं मुल्क के लिए गोल्ड जीतूं। तो मेरा फोकस जो है इस वक्त पूरी तरह से प्रेपरेशन के ऊपर है। एंड जनाब, एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पीएसएल 10। इट इज रिज्यूमिंग